हरे कृष्णा।
इस जगत के साधक हो या वहां के नित्य परिकर भगवान के धाम में, सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, है ना। सब लोग हरि नाम लेते हैं, नाम सभी लेते हैं। तो इसलिए जो प्रारंभिक भक्त हैं वो कर्तव्य समझकर अपने शुद्धिकरण के लिए हरि नाम लेते हैं, और जो उन्नत वैष्णव हैं वो इस हरि नाम का रसास्वादन करते हैं। ये मूल अंतर है, क्योंकि हरि नाम लेना ये एक स्वाभाविक लक्षण है जीवात्मा का। ये कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, बाहरी कार्य नहीं है, स्वाभाविक है। आत्मा के लिए स्वाभाविक है कृष्ण का नाम लेना। तो ये नाम संकीर्तन आध्यात्मिक जगत में भी चलता है, हरि नाम संकीर्तन वहां भी चलता है। जैसे कि एक जगह उद्धव संदेश में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि माता यशोदा हमेशा किसका नाम ले रही हैं, मेरा नाम ले रही हैं। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, वो हमेशा मेरा नाम ले रही हैं वीर्य के कारण, मेरा चिंतन करते हुए बार बार जोर जोर से धीरे धीरे सांस लेते हुए हा कृष्णा करके पुकारते हैं। इस प्रकार उनकी आंखों से अश्रु धारा बहता है और पूरा उनका शरीर भीग जाता है। और इस प्रकार मथुरा की तरफ जो सड़क जा रही है उसकी ओर देखती रहती है, ताकती रहती है माता यशोदा, देखती रहती है कब कृष्ण वापस आएंगे। तो इस प्रकार ये कृष्ण जानते हैं कि माता यशोदा निरंतर इस तरह से कृष्ण का नाम ले रही है, है ना। क्योंकि वास्तव में अगर कोई कृष्ण का नाम लेगा तो निश्चित रूप से कृष्ण नाम रूप में उस भक्त के हृदय में वास करते हैं, और उस भक्त के जीवा में नृत्य करते हैं। एक जगह एक सखी ने कृष्ण से कहा कि देखो हे कृष्ण, जब आप गोचारण लीला के लिए जाते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं, अपना पूरा दिन बताती हैं आपको देखने के लिए, और हमेशा उस रास्ते की ओर देखती रहती है, ताकती रहती हैं, और बार बार दो अक्षरों का उच्चारण करती हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार से आपके वेणु वादन को सुनते हैं और बार बार आपके नामों को उच्चारण करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भी राधा कृष्ण गुणदेव दीपिका में लिखा है कि कृष्ण जिस नाम का उच्चारण करते हैं वो क्या है, जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं या नाम का उच्चारण करते हैं वो किसका नाम लेते हैं, कृष्ण श्रीमती राधारानी का नाम लेते हैं, और राधारानी किसका नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। यानी कि हम जब महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, तो वास्तव में हम राधारानी का नाम ही ले रहे हैं और कृष्ण का नाम ही ले रहे हैं। जिसको इसलिए उसको युगल मंत्र कहा गया है, युगल मंत्र कहा गया है। इस भौतिक जगत में कोई भी आप नाम लेते हैं उसमें रस नहीं होता है, वो नीरस होता है, उससे कोई अनुभूति नहीं होती है, सुख की कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई शाश्वतता की अनुभूति नहीं होती है, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। भौतिक नामों से कोई शाश्वत ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि नाम और नामी में भेद होता है संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो भी नाम है, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं होता। यह आध्यात्मिक जगत की विशेषता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इस प्रकार में कि नाम की महिमा के बारे में ये अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है ग्लोरीज ऑफ द होली नेम चैप्टर 2। ऐसा देखा गया बार बार नाम की महिमा के बारे में हम सुनते हैं, या नाम की महिमा के बारे में ग्रंथों से सुनते हैं या ग्रंथों का अध्ययन करते हैं नाम की महिमा के बारे में, तो हमारा आकर्षण नाम के प्रति बढ़ता है। जैसे ठाकुर भक्तिनाथ ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है हरि नाम चिंतामणि, और कई ऐसे पुस्तकें लिखी जा चुके हैं हरि नाम के ऊपर। तो इस प्रकार अपनी श्रद्धा को, अपनी दृढ़ता को हम लोग और प्रबल बना सकते हैं जब और अधिक से अधिक नाम की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे पुस्तकों से, और नाना प्रकार के जो श्लोक लिखे गए हैं नाम भजन के बारे में, जैसे बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी ने 60 से ज़्यादा श्लोक वर्णित किए हैं ये बताते हुए कि ये भक्ति रसायन श्लोक हैं, इन श्लोकों का स्मरण करने से, उच्चारण करने से नाम के प्रति आकर्षण बढ़ता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने एक बार कहा कि नाम की महिमा का हमें निरंतर गुणगान करना चाहिए, इसका निरंतर अभ्यास करो, मैं भी करता हूँ, हरिनाम हमारा जीवन है। तो नाम के बारे में हमें प्रत्येक दिन सुनना चाहिए, है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मन जो है वो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है और भौतिक विचारों में लिप्त है, और हम लोग इसी जगत की महिमा सुनते हैं, इसी जगत के बारे में श्रवण करते हैं, इसी जगत का कीर्तन करते हैं, यहाँ के ही नेताओं का गुणगान करते हैं, अभिनेताओं का गुणगान करते हैं, इसलिए उन्हीं का स्मरण होता है। जिसका हम श्रवण कीर्तन करेंगे उसी का स्मरण होगा, लेकिन जब अगर हम लोग कृष्ण की नाम, कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे या कृष्ण नाम की महिमा सुनेंगे शास्त्रों से, बार बार सुनेंगे और उसका कीर्तन करेंगे, उसका हम श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण नाम का स्मरण भी होगा, नाम का स्मरण भी होगा। इसलिए अनजाने में नामों का जप किया जाए या जान के नामों का उच्चारण किया जाए, प्रत्येक अवस्था में हरि नाम तो हमें क्या देने वाला है, परिणाम देगा ही, फल देगा ही। लेकिन ये जो नाम की महिमा है इसको हम लोग विद्वत्ता से नहीं समझ सकते हैं या तर्क से नहीं समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसको समझने का तरीका क्या है, श्रद्धा, भक्ति और निरंतर हरि नाम लेना। इसलिए महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि नाम लो। नाम सबसे उत्तम साधन है और कहीं भी लिया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, विशेष काल और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है हरि नाम लेने के लिए। और इसके क्या क्या लाभ हैं बताए गए यहाँ पर। ये जो हरि नाम है हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे मन को पवित्र बनाता है, और जब हमारा मन, हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ये मन भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकता है। अशुद्ध मन में भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं होता, करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाते, इसलिए इस चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। चेतो दर्पणम आर्जनम भव महा दवाग्नि निर्वापनम शैया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये हरिनाम लेने के लाभ बताए गए हैं, हमारे मन को स्थिर करता है। छह प्रकार के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को ये नष्ट करता है, जन्म मृत्यु को रोकता है, भवसागर से बचाता है, पापों को नष्ट करता है, बुरे संस्कारों को नष्ट करता है, हमें अनासक्त बनाता है, भौतिक इच्छाओं को नष्ट करता है, और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, हमें निर्भय बनाता है और हमारे भ्रम को दूर करता है, परम शांति की अनुभूति कराता है, प्रेम प्रदान करता है और हमें अनुभूति कराता है कृष्ण का, उनके धाम का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का। यह हरिनाम हमारे स्वरूप को प्रकट करता है, भक्ति रस प्रदान करता है और भगवान के धाम में यह हमें नित्य सेवा प्रदान करता है। तो ये सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का लाभ है। केवल मन की शांति के लिए हम लोग हरि नाम नहीं ले रहे, वो तो केवल प्रारंभिक लोगों को आकर्षित करने के लिए है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार, लेकिन हरि नाम लेने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग का स्ट्रेस दूर हो जाए, वो तो दूर होगा ही, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हमें सेवा प्राप्त हो। तो ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं कि अगर हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सिद्ध देह को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो नाम ही साधन है और यही साध्य की प्राप्ति कराएगा। तो इस तरह से जब हम शुद्ध नाम लेते हैं तो क्या होता है, विशुद्ध सत्व हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और विशुद्ध सत्व जब हृदय में प्रवेश करता है तो फिर अपने स्वरूप के बारे में हम लोग जान पाते हैं, कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध क्या जान पाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये हमें अनुभव कराता है हरि नाम क्या, कि हमारा वह स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर ये आभास नहीं करा रहा है हरि नाम में प्रारंभ में, ये भी आभास नहीं हो रहा है अगर हरि नाम लेने से, तो इसका मतलब हम नाम अपराध कर रहे हैं, हमारा संबंध ज्ञान स्थापित ही नहीं हुआ अभी तक, हमें संबंध ज्ञान ही नहीं हुआ। संबंध ज्ञान का मतलब क्या है, संबंध ज्ञान का मतलब हमें ज्ञान हो जाना कि हम दास हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब तक इस बात की अनुभूति नहीं हो रही तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। भले ही आप कोई भी रस में स्थित हो, आपके स्वरूप में कोई भी आप रस में स्थित हो, लेकिन सभी रसों का मूल आधार है दासत्व की भावना, सेवा की भावना। सेवा अधिकारा दिए करने जो दास, तो हम अधिकार मांगते हैं सेवा के लिए, तो सेवा के लिए अधिकार मांगते हैं। तो हरिनाम लेने का अभिप्राय भी यही होता है, सेवा, कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें आप सेवा दीजिए, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, हरिनाम लेते हैं सेवा दीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब सेवा आती है तो मना कर, तो फिर नाम जो है फिर वो कार्य नहीं करता हमारे ऊपर, हमारी चेतना अशुद्ध रहती है, निर्मल नहीं हो पाती है, क्योंकि नाम लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। जिस दासत्व की प्रार्थना हमने की, दास बनने के लिए हमने प्रार्थना की, वो हम लोग निभा नहीं रहे। सेवा की भावना से हमें हरि नाम लेना चाहिए, सर्विस इंक्लाइंड होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए कैसे, सेवा की भावना से, विथ सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स वन मस्ट हियर हरि कथा। सेवा की भावना से हरि नाम लेना चाहिए, कि हम सेवा करना चाहते हैं आपकी, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं, हम आपको क्यों पुकार रहे हैं, आपकी सेवा करने के लिए, आपको सेवा में लगाने के लिए नहीं, खुद सेवा में लगने के लिए, ये हरि नाम लेने का उद्देश्य होना चाहिए। तो जहां सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर सेवा करते हैं, फिर संबंध ज्ञान स्थापित होने लगता है। प्रश्न यही उठता है ना कि संबंध ज्ञान स्थापित कैसे किया जाए, तो ये साधन है हरि नाम, ये साधन है जिसके माध्यम से संबंध ज्ञान स्थापित होता है। हम सेवा की याचना करते हैं और सेवा हमें दी जाती है, प्रार्थना करने पर सेवा मिलती है। सेवा जब हम करते हैं या उसका प्रयास करते हैं, सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे क्रमशः ये ज्ञान जागृत हो जाता है, संबंध ज्ञान जागृत हो जाता है कि हम वास्तव में दास हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। फिर उसके बाद आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है, नहीं तो हम लोग हरि नाम लेते रहेंगे बहुत समय तक, उसका कोई लाभ नहीं होगा। एक बार एक गृहस्थ भक्त थे, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वो उन्होंने कहा कि मैं एकादश भाव में दीक्षा लेना चाहता हूँ। एकादश भाव का मतलब है कि जब सिद्धि की तरफ बढ़ता है तो स्वरूप के 11 लक्षण होते हैं, वो प्रकट होते हैं, स्वरूप के 11 लक्षण प्रकट होते हैं। जो सिद्धि की तरफ कोई बढ़ता है, स्वरूप के 11 लक्षण होते हैं। नाम, जैसे आपकी सेवा, इस प्रकार से 11 लक्षण होते हैं, वस्त्र वगैरह इत्यादि। तो बाबा जी महाराज ने क्या उत्तर दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है, और कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र में परम भगवान श्री कृष्ण का सिद्ध स्वरूप है, सभी जीवात्माओं का सिद्ध स्वरूप है। अगर आप इस हरि नाम का उच्चारण करेंगे, शुद्ध नाम का उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, ये महामंत्र जो है आपके स्वरूप को और उसके बाद कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के स्वरूप को प्रकट करेगा, और ये आपके स्वरूप को भी प्रकट करेगा, आपकी सेवाओं को भी प्रकट करेगा, और जो आपके स्वरूप से संबंधित जो 11 लक्षण हैं वो भी प्रकट हो जाएंगे। तो हरिनाम अपने आप में पूर्ण है, पूर्णतम है, हरिनाम में सब कुछ है। अक्सर शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही देते थे, हरिनाम लो उत्तर मिल जाएगा। तो हरिनाम में सब कुछ है देखा जाए तो। इस हरिनाम में ये जो आप जपमाला है, ये जो हमारी थैली है जिसमें जपमाला रखा हुआ हमने, इसमें संपूर्ण आध्यात्मिक जगत है, ये सिर्फ अनुभूति की बात। श्री भक्ति ठाकुर ने इस प्रकार से समझाया, क्या समझाया कि किस तरह से ये हरिनाम जो है हमें आध्यात्मिक शरीर प्रदान करता है। जब भी शास्त्र जो है नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, तो वो केवल अक्षरों के बारे में नहीं वर्णन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन किया जाता है, तो वास्तव में जो नाम है उसके बारे में बताया जा रहा है, शुद्ध नाम के बारे में बताया जा रहा है, शुद्ध नाम की महिमा का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में। क्योंकि जब तक नाम अपराध हम करेंगे, हम वास्तविक नाम नहीं ले रहे हैं, हम केवल अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन साथ में ठाकुर भक्तिनंद ने कहा है कि फिर भी नाम अपराध भी अगर हम कर रहे हैं, फिर भी यही साधन है, और यही साधन हमें साध्य की तरफ बढ़ाएगा। इसलिए हालांकि हम नाम अपराध कर रहे हैं, फिर भी निरंतर हमें इन्हीं नामों का उच्चारण करना होगा, इसी को साधन मानते हुए। और साथ में श्री रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रायम इंद्रिय सेवोर मुखो ही जीवादो स्वयं स्फूर्ति अदा। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। यानी कि जब कोई व्यक्ति सेवा के माध्यम से, दिव्य सेवा के माध्यम से पूर्णतः क्या हो जाता है, पूर्णतः भक्तिमय हो जाता है, तो क्या होता है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं स्वयं ही प्रकट होती है। जब हम भक्ति में परिपक्व होने लगते हैं, स्वयं स्फूर्ति अदा, आज हम बता रहे हैं, बता रहे स्वयं स्फूर्ति अदा। तो ये श्री रूप गोस्वामी ने भी यही बताया, ओनली वेन वन बिकम स्पिरिचुअली सैचुरेटेड बाई ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड आर द ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म क्वालिटी एंड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड रिवील टू हिम। रिवील्ड का मतलब होता है, रिवील का मतलब है कि आपके पास वो क्षमता नहीं है। अगर आपको रिवील किया जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके पास वो क्षमता नहीं है। आप प्रयास भले करते रहो, जब कृष्ण इसको प्रकट करना चाहेंगे तब वो प्रकट होगा। रिवील का मतलब ये होता है, क्योंकि वो कृष्ण के पास है, तो जब वो देना चाहेंगे तब आपको देंगे। कब आपको प्राप्त होगा आपको ही नहीं पता, आप प्रयास करते रहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रयास क्योंकि कर रहे हैं, तो प्रयास, मेरे प्रयास के कारण ये सिद्धि प्राप्त हुई है, या मैं प्रयास करूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम कृष्ण को मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, आप हमें सिद्धि प्रदान करें। आप सो रहे हैं इस बात को, क्योंकि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। ऐसा हम लोग कृष्ण से नहीं कह सकते, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने बहुत प्रचार किया है, मैंने बहुत पुस्तकें बांटी हैं, अब मैं आपसे डिमांड करता हूं कि वह आप अपने आप को प्रकट करें। कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण अपने आप को किसी को भी प्रकट कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, इसी कारण से तो वो स्वराट है, इस कारण से वो स्वतंत्र है ना। लेकिन इस कारण ये भी नहीं हम प्रयास करना छोड़ दें। लेकिन यह जो भाव बताया जा रहा वो ये है कि कर्ता की भावना नहीं होनी चाहिए। सेवा हम करें क्योंकि हमारा स्वरूप वो है, लेकिन सेवा करके हम लोग अहंकार ना प्रकट करें क्योंकि मैंने इतनी सेवा की है तो मुझे कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए, मुझे अधिकार प्राप्त होना चाहिए क्योंकि मैंने इतनी सेवा की है, दिन रात मैंने मेहनत की है कि नहीं। या मैं खाना भी छोड़ दिया, मैंने पीना भी छोड़ दिया, दूध पीकर मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, जैसे वो ब्राह्मण ने कहा, हमने बताया था ना पहले, मैं दूध पीकर जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके संकीर्तन लीला को देख सकता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि दूध पीकर अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो तो सब दूध पीकर ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर है कि नहीं। तो इस प्रकार ये बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं, विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर विचित्रात् स्फुरितात् प्रसादात् विचित्र संकीर्तन माधुरी सा न तु स्यायत्नात् इति साधु सिद्धे। मतलब भगवान की आयुत की कृपा से जो कि अमृतमय लीलाओं से भरपूर है, हरि नाम की महिमा व्यक्त होती है, अपने प्रयास से नहीं होता। ओनली बाय द वंडरफुल मर्सी ऑफ द लॉर्ड हु इज द नेक्टर ओशियन ऑफ ब्यूटिफुल पास्ट टाइम इज द चार्मिंग स्वीटनेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम मैनिफेस्ट इट डज नॉट अपियर बाय वन्स ओन एफर्ट्स। तो इसलिए बस नाम लेते रहना पड़ेगा क्योंकि हम दास हैं, प्रभु समझकर हमें नाम नहीं लेना चाहिए, अपने को भोक्ता समझकर नाम नहीं लेना चाहिए, भोग्य समझकर हरि नाम लेना होगा अपने आप को। और दास का मतलब यह है कि वो कुछ मांग नहीं सकता, मांगने का भी अधिकार नहीं है उसको। हाँ, एक चीज हम लोग मांग सकते हैं, सेवा, सेवा मांग सकते हैं बस, और कुछ नहीं मांग सकते हैं। हम धाम जाना चाहते हैं, प्रेम चाहिए हमें, ये सब नहीं मांग सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, इसका अर्थ ये है कि हम लोग ये अधिकार नहीं जमा सकते, प्रभुत्व की भावना से हम नहीं प्रार्थना कर सकते इस प्रकार कि मैं इतने साल हरिनाम लिया है, मुझे लीला में प्रवेश करना चाहिए। क्यों नहीं लीला में प्रवेश करना हमें? तो इस प्रकार हम प्रभुत्व की भावना से प्रार्थना नहीं करेंगे। तो यहां पर फिर नाम की महिमा के बारे में कई शास्त्रों से उद्धरण दे रहे हैं। हरिवंश में क्या लिखा है, संपूर्ण वेदों में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, प्रारंभ से लेकर अंत तक परम भगवान श्री हरि के बारे में गुणगान किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद में नाम की महिमा का वर्णन मिलता है, छठे स्कंद में भी नाम की महिमा का वर्णन मिलता है, भागवत का जो आखिरी श्लोक है वो भी नाम का महिमा बता रहा है, नाम की महिमा बता रहा है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होए सर्व जगत निस्तार, चेतन चरितामृत अंत लीला। यानी पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है नाम लेने मात्र से, है ना। हरि नाम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम ही आपको इस संसार से, संसार के भवसागर से बचा सकता है आप। ना देशो नियमो राजन, यह हरिभक्ति लास में दिया, ना काल नियमस्त था, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नियमते स्मरणे ना काल आहा, है कि नहीं। हरि नाम लेने के लिए कोई देश काल पात्र नहीं है, कोई नियम नहीं है। विद्यते नात्रो संदेहो विश्वर नामानो कीर्तने, कालोस्ति दाने यज्ञ च स्नाने, कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने, कालो नास यत्र पृथ्वी तले। बोलते हैं कि कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है इस नामों के जप में, कोई नियम नहीं है कि कहां पर ये हरि नाम लिया जाए या विष्णु का नाम लिया जाए, इसमें कोई शंका नहीं है। दान देने के लिए, यज्ञ करने के लिए देश काल पात्र देखना पड़ता है, लेकिन हरिनाम लेने के लिए देश काल पात्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं भी लिया सकता है पृथ्वी में, हरिभक्ति लास में दिया है, यह हरिनाम कहीं भी पृथ्वी में लिया जा सकता है, किसी भी समय लिया जा सकता है, है ना। तो सनातन गोस्वामी ने ये लिखा ग्रंथ में, लेकिन पूरे पृथ्वी में तो ले ही रहे हरिनाम, पूरे पृथ्वी में हरिनाम लिया जा रहा है। कृते यध्यायतो विश्वम त्रेतायाम यजतो मखी, द्वापरे परिचयायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये तो सब जानते हैं आप सब, है ना। ना बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है और वो है हरि नाम का उच्चारण। बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
तो ये सभी शास्त्रों का तात्पर्य है, सार है। इति षोडशकम् नामनाम कलि कल्मष नाशनम, नातः परतर उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। जैसा हमने पहले ही बताया है इसके बारे में, है ना, कलियों के कलमश को समाप्त करता है कलिशंत्र उपनिषद, अथर्ववेद से लिया गया है। नामो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरहा। और एक बार कोई हरिनाम लेता है तो इतने पाप कट जाते हैं कि उतना पाप कोई पापी व्यक्ति कर भी नहीं सकता, एक बार हरिनाम लेने से। जैसे अजामिल ने लिया, अजामिल ने शुद्ध नाम तो नहीं लिया, नाम का आभास हुआ, शुद्ध नाम का आभास, संकेत नामाभास, और नामाभास से क्या हुआ, सारे पाप कट गए एक बार नाम लेने से। नाम में इतनी शक्ति है, है ना, भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति। इसलिए शायद इस देश में जो लेते हैं लोग, बहुत पुण्यात्माएं हैं जो भारतवर्ष में, भारत देश में जन्म लेते हैं, कहीं ना कहीं भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण तो सुनते ही हैं, है ना। एक कृष्ण नाम में करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे ना प्रकाश। तो ये हुई बात बंगाली में बताई गई, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटक कोटयः। ये इतना मंगलकारी है हरि नाम, जो भी उसका उच्चारण करता है वो सभी पापों से छुटकारा पा जाता है, कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं हरि नाम लेने मात्र से। अवेशनापि यन नामनी कीरिते सर्व पात कई, पुमान विमुच्यते सद्य सिंह त्रष्टैर मृगई इव। असहाय अवस्था में या बिना इच्छा किए हुए कोई हरिनाम लेता है तो क्या होता है, सभी पाप जो हैं वो भाग जाते हैं। जिस प्रकार जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो क्या होता है, सारे जानवर भागने लगते हैं, है ना। हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे ये यज्ञ करना आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में रहने का मतलब है कि हम हर क्षण पाप कर रहे हैं। कलयुग में जो भी रह रहा है व्यक्ति, जिसने भी जन्म लिया है, वो प्रत्येक क्षण वो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। तो जो संकीर्तन यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, वो पापों से नहीं बच सकते, उनको यमपुरी जाना पड़ेगा।
अमह समहरत अखिलम सकृत उदयात एव सकल लोकस्य तरणय इव तिमिर जलधीम जयति जगन मंगलम हरेर नाम।
जिस तरह से जब सूर्य उदय होता है तो सब अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से जो हरि नाम है अगर वो अपराध रहित लिया जाए तो क्या होता है, सभी पापों से हमें छुटकारा दिलाता है। हरि नाम की जय हो जो पूरे जगत को क्या करने वाला है, मंगलमय बनाने वाला है। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के यहाँ पर श्लोक का उदाहरण दिया गया है, नाम की महिमा है। तो इन सब का हमें अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में सुनना चाहिए। जितना अधिक हम नाम के बारे में सुनेंगे उतनी श्रद्धा हमारी बढ़ेगी नाम के प्रति। और श्री रूप गोस्वामी स्तवमाला में कह रहे हैं एक जगह पर, हालांकि मैं सबसे अधम हूं और आप सबसे उत्तम हैं, हालांकि मैं मूर्ख हूं और आप सबसे महान दार्शनिक हैं, हालांकि मैं दुष्ट हूं और आप सबसे बड़े संत हैं, हालांकि मैं अपराध करता रहता हूं आपका चिंतन करते हुए, लेकिन हे प्रभु, ये जो नाम का जब आभास होता है तो सभी पापों से मुझे छुटकारा दिलाता है। तो मेरे ऊपर आप दया करें जो कभी कभी आपका नाम लेता है। तो कभी कभी नाम लेने से ही पापों से छुटकारा मिल जाता है, है ना। लेकिन तो शास्त्र में सुझाव देते हैं कीर्तनीय सदा हरि, है ना। ठाकुर भक्तिनाथ यही कहते हैं, कनिष्ठ भक्त का मतलब है जो कभी कभी जप करते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त जो हैं उसका अर्थ है कि जो हमेशा जप करते हैं, और उत्तम वैष्णव वो हैं जिनके दर्शन करने मात्र से हरिनाम लेने का मन करता है। ये जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर हरिनाम लेने का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन निरंतर अभ्यास हम तभी कर पाएंगे, निरंतर हरिनाम तभी हम कर पाएंगे जब शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक को हम अंगीकार करेंगे। तृणादपि सुने चेन तरुरपि सही सुना अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि। तो जब ये चार योग्यताएं हम प्राप्त कर लेंगे तब हम लोग हरिनाम हमेशा ले पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेना भी चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, ये संख्या ही पूरी करेंगे हम केवल, है ना। तो संख्या ही पूरी करेंगे तो फिर हम लोग ज्यादा अधिक आगे नहीं बढ़ सकते। ओम अनावृति शब्दात, ये है वेदांत सूत्र का एक श्लोक। अनावृति शब्दात का मतलब है कि ऐसे शब्द के उच्चारण से क्या होता है, क्या होता है, हम लोग मुक्त हो जाते हैं, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं, दोबारा आवरण नहीं होता है या अनावृत हो जाते हैं। अभी आवरण किसका है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का आवरण है कि नहीं। तो शब्द ध्वनि का जब उच्चारण होता है, हरि नाम का जब उच्चारण करते हैं तो अनावृति हो जाती है। अभी हम लोग ढके हुए हैं माया के प्रभाव में, हम सब माया के प्रभाव में भ्रमित हैं। मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। मधुर मधुरम, ये हरि नाम क्या है, मधुर मधुरम, है ना। और मंगलम मंगलानाम मतलब सभी जो मंगल करने वाले कार्य हैं उसमें भी ये मंगल करने वाला है। और स्वयं प्रकाशित है और वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है, भृगु में श्रेष्ठ, हे भृगु में श्रेष्ठ, स्कंद पुराण में आता है ये श्लोक। जब कोई हरिनाम का उच्चारण करता है अपराध रहित होकर, ध्यान पूर्वक करे या ध्यान पूर्वक ना करे, तो क्या हो, तत्काल क्या होता है, मनुष्य जो है भव सागर से छुटकारा पा लेते हैं। गीतावली में श्रील भक्तिवन ठाकुर लिखते हैं श्रीनगर कीर्तन, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो अपराध रहित होकर आप कृष्ण का नाम लीजिए, और कृष्ण ही आपके माता हैं, कृष्ण आपके पिता हैं,
कृष्ण ही आपके धन प्राण। विचेयानी विचारयानी विचिन्तयानी पुनः पुनः कृपणस्य धनाय नीव त्वन नामानि भवन्तु न। जिस तरह से एक कृपण व्यक्ति वो संग्रह करता रहता है, गिनता रहता है, धन का स्मरण करता है, अपनी पूंजी का स्मरण करता है, इसी प्रकार से हम भी क्या करें, संग्रह करें और गिने संख्या पूर्वक, बोलते हैं ना, तो संख्या के द्वारा हम लोग हरि नाम की गिनती करते हैं और इस तरह से निरंतर नामों का स्मरण करें। जिस तरह से धनी व्यक्ति धन के बारे में निरंतर स्मरण करता है, कैसे धन कमाओ, कैसे धन कमाओ, कैसे धन कमाओ, दिन रात पैसा 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 गिनता रहता है। सारे जितने बनिए हैं, मारवाड़ी हैं, व्यापारी लोग हैं, आप जाइए चांदनी चौक में या खाड़ी बावली में, पुरानी दिल्ली में, वो पैसा ही गिन रहे हैं बैठ के, एक पेटी, दो पेटी, तीन पेटी, खोका पेटी कहते हैं या खोका, लाख रुपए गिन रहे हैं, करोड़ रुपए गिन रहे हैं, छोटी सी दुकान में बैठे हुए हैं, रात के 9-9 बजे तक बैठे हुए, घर ही नहीं जा रहे, नोट ही गिनते जा रहे हैं, बस वही उनका जीवन है, है ना, वही उनकी संपदा है, सही मोरा संपदा, सही मोरा जीवन है रा जीवन, धन। लेकिन असली धन तो यह है, गोलो केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रीर आवृत्य तु यत फलम, एकावृत्य तु कृष्ण से नामैकं तत् प्रयच्छति। यानी कि हजार नाम लेते हैं, विष्णु सहस्र नाम महाभारत में आता है ना, भीष्म पितामह ने उच्चारण किया विष्णु सहस्त्र नाम, हजार नाम लिए। इस विष्णु सहस्त्र नाम का आप अगर आप 3 बार उच्चारण करते हैं, यानी कि 3000 नाम लेते हैं, तो कृष्ण के एक नाम के बराबर है। एक बार आप कृष्ण नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने 3000 बार विष्णु के नाम ले लिए हैं। तो ऐसा किसमें दिया, ब्रह्मांड पुराण में दिया, ब्रह्मांड पुराण में वन टाइम। पाप ताप सब दूरे जावे, सार मोए संसार होवे, आर कोनो होय भोय नाही रवे, डूबे सुखेर पाथारे। सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, भौतिक दुख कलमश समाप्त हो जाते हैं और ये संसार हमारे लिए क्या हो जाता है, सार्थक बन जाता है, कोई भय नहीं रह जाता है और हम लोग डूबे सुखेर पाथारे, सुख के सागर में हम लोग डुबकी लगाते हैं, फिर सुख के सागर में डूबते नहीं है, डुबकी लगाते हैं। साधारण सागर में तो कोई तैरना भी चाहेगा तो कितना तैरेगा, डूब जाएगा ये। लेकिन जो सागर है आनंदाम बुद्धिवर्धनम अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब होता है सागर, और ये सागर किसका है, आनंद का सागर है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम अम्बुधिवर्धनम, है ना, अगर आपको तैरना भी नहीं आता है फिर भी आप इस सागर में उतर सकते हैं, डूबेंगे नहीं आप। नहीं, कई बार बेचारे भग जाते हैं समुद्र में, डूब जाते हैं, नदी में जाते हैं डूब जाते हैं। हम बोलते धाम चले गए, लेकिन ये अगर वास्तव में हरिनाम संकीर्तन का हम आनंद लेंगे तो हम डूबेंगे नहीं, फिर दोबारा हम तैरेंगे, हम तैरने लगेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और आगे की देखिए क्या है, सर्वत्र सर्व कालेषु येपि कुर्वन्ति पातकम् नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम्। मतलब हमने कई तरह के पाप किए हैं, कई तरह के पाप किए हैं, किसी भी परिस्थिति में किया होगा, किसी भी समय में किया होगा, लेकिन अगर हम अभी हरिनाम लेते हैं तो संपूर्ण पापों से छुटकारा पा लेते हैं और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यान्ति विष्णु परम पदम, कितना अच्छा है, देखिए है ना। जीवन भर पाप किया, डर लग रहा है, अब मृत्यु निकट आने वाला है, क्या किया जाए, कोई है उपाय? हाँ है, आ जाओ हमारे पास। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, है ना। और कोई उपाय नहीं है, यही उपाय है। नाम संकीर्तनम विष्णु क्षुत्र प्रपीदितादिषु करोति सततम विप्रास तस्य प्रीतो हि अधोक्षजा। हे ब्राह्मणों, परम भगवान जो कि इन भौतिक इंद्रियों से परे हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से। भूख है, उस व्यक्ति को भूख लगी है, प्यास लगी है, कई प्रकार के कष्ट हैं, फिर भी वो सदा हरिनाम ले रहा है आपका, तो भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, वो नाम को नहीं छोड़ता है, है ना। हरिदास ठाकुर की हम कथा में देखते हैं, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, जल्लादों ने पीटा खूब, नाम लेना बंद करो नहीं तो नवाब तुम्हें मार डालेगा। वैसे तो हमें भेजा मारने के लिए, तो वो मर ही नहीं रहा हरिदास ठाकुर, वो नाम लेते जा रहे हैं, वो बार बार मारते जा रहे हैं। 22 बाजारों में पीटा के देखिए हरिदास ठाकुर को, उन्होंने कहा खंड खंड कर दो मेरे शरीर को, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा, है ना। लेकिन हमारी अवस्था क्या है कि हम बीमार हो जाते हैं, अगर खंड खंड कर दो आप, मैं हरि नाम नहीं लूंगा। अगर आपने खंड खंड किया तो नाम तो लूंगा ही नहीं, मैं नाम निकलेगा नहीं, वैसे ही नहीं निकलता नाम। स्वस्थ है हम लोग सब, सबका शरीर स्वस्थ शरीर है, हृष्ट पुष्ट है, सब कुछ पच रहा है, स्वस्थ शरीर है, फिर भी हरि नाम नहीं लिया जा रहा है। एक हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा है, फिर भी हरि नाम नहीं लेना बंद कर रहे हो, बताइए, है ना, कितनी शक्ति होगी उनमें। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा जब हरिदास ठाकुर को इस तरह से पीटा जा रहा है, तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो हरिदास ठाकुर को पीड़ा ही नहीं हो रही थी, महाप्रभु ने वो कष्ट सारा ले लिया, कि नाम किसका ले रहे थे, उन्हीं का तो ले रहे थे। इसी तरह से हमारे भी जो भक्त हैं, रूस में जब कम्युनिज्म था उस समय उनको पकड़ा गया था, उनको पीटा गया था, है ना, उनके तलवे पर मारा गया था, बैटन, उसको बैटन कहते हैं, रबर का होता है, वो लिटा के ना वो तलवे पर मारते हैं जोर जोर से, जोर जोर से मारा, जोर जोर से मारा, बोल तुम नाम लेना बंद कर दो, मीट खाना शुरू कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो तो नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मारना जितना मार लो, और मारते रहे और मारते रहे, और फिर उनको वहां बंद कर दिया और ठंडा ब्रेड खाने को दिया, लो खाओ यही है तुम्हारे लिए भोजन, और लो हरिनाम, ये खाने को तुम्हें यही मिलेगा, सूखा ब्रेड। साइबेरिया भेजा गया भक्तों को, एसाइलम, टॉर्चर किया गया कई तरीके से, मेंटल टॉर्चर किया गया, लेकिन ये भक्त हैं सार भावना प्रभु, जिन्होंने वो पुस्तक ली है सॉल्टेड ब्रेड, बहुत अच्छी पुस्तक है, वो अपना अनुभव लिखा उन्होंने, लेकिन हरि नाम लेना नहीं छोड़ा उन्होंने। हरिदास ठाकुर की बात तो हम सुनते हैं 500 साल पहले, ये तो अभी अभी हुआ है, और इस देश में नहीं हुआ है, इस देश में तो ऐसी कोई घटना नहीं सुनी, नहीं है ना, ये तो रशिया की घटना है, इसलिए शायद इसी कारण से ऐसे भक्तों की तपस्या के कारण ही आज रशिया में इतना प्रचार हो रहा है, महाप्रभु की विशेष कृपा हो रही है उस देश में, क्योंकि वहां के भक्तों का परित्याग देखकर, उनके समर्पण की भावना को देखकर, हरि नाम के प्रति महाप्रभु वहां साक्षात प्रकट हो गए हैं, पंचतत्व वहां प्रकट हो गए हैं, इसलिए वहां भक्त बन रहे हैं। तो ये है कि नाम के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ता है जब हम लोग कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, अपने सुख का परित्याग करते हैं। दुख का परित्याग तो सब करना चाहते हैं, लेकिन सुख का परित्याग कौन करना चाहता है? सुख का परित्याग जब भक्त करता है कृष्ण की सेवा हेतु, तो फिर नाम के प्रति आकर्षण जागृत होता है। वैष्णवों की सेवा करने से, जीव के प्रति दया दिखाने से नाम के प्रति आकर्षण जागृत होता है। और कष्ट सहते हुए, हर प्रकार का कष्ट सहते हुए, जैसे यहां पर लिखा हुआ था, भूख लगी है, प्यास लगी है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन फिर भी हरि नाम लेते जा रहे हैं, है ना, आवाज नहीं निकल रही मुंह से, फिर भी हरि नाम ले रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, केवल हरि नाम लेना नहीं छोड़ रहे। तो छोड़ना नहीं, ये अभ्यास है, हमारी भी परीक्षा होगी। जो भक्त गंभीर हैं उन सब की परीक्षा लेंगे कृष्ण, बहुत कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि कृष्ण जो है अपने भक्तों को प्रशिक्षित करते हैं, शरीर छोड़ने से पहले ही उनको प्रशिक्षित करते हैं, है कि नहीं। यस्याहम अनुगृणामी हरिष्ये तद धनम शनै, भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका मैं छीन लेता हूं सब कुछ, धीरे धीरे लेकर। शनै का मतलब धीरे धीरे, धन इत्यादि जिनसे आपको आसक्ति है वो छीना जाएगा। और सबसे बड़ी आसक्ति तो हमारी अपने शरीर से है, तो शारीरिक कष्ट अगर होंगे और फिर भी हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा आकर्षण धीरे धीरे बढ़ेगा हरि नाम के प्रति, क्योंकि ये जो शारीरिक कष्ट होंगे ये कृष्ण के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, ये हमारे प्रारब्ध नहीं होंगे, कृष्ण ये योजना बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। तो जो भक्त सहन कर लेते हैं और सहन करते हुए हरिनाम लेते रहते हैं, उनका नाम के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है। ये तो इस प्रकार अपने को ऐसी परिस्थिति में हमें डालना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब है आराम का जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है। आप समझ रहे हैं, आराम का जीवन आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता, कष्ट उठाना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तब अनंत सुख की प्राप्ति होगी जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या का अर्थ होता है जब ना चाहने पर भी हम कष्ट उठाते हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हम कष्ट उठाते हैं, यानी हमें अच्छा नहीं लगता है फिर भी हम कष्ट उठा रहे हैं। आलसी जीवन बिताएंगे अगर हम लोग, है ना, तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन नीरस हो जाएगा, सूखा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वास्तव में अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं, वास्तव में हम चेतना को शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसी सेवाओं में लगना पड़ेगा जिसमें हमें कष्ट उठाना है। जैसे कई भक्त हम देखते हैं गर्मी के मौसम में ग्रंथों का वितरण करते हैं, या बहुत अधिक सर्दी के मौसम में ग्रंथों का वितरण करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात हो प्रचार के कार्य को छोड़ते नहीं, खतरनाक स्थानों में जाते हैं, कष्ट उठाते हैं प्रचार के लिए, तो ये सब शुद्धिकरण के लक्षण है। तो इस प्रकार इन बातों को समझना चाहिए। सर्व रोगो पशमम सर्व पद्रव नाशनम शांतिदम सर्वा रिष्टानाम हरे नाम नुकीर्तनम। यह जो हरिनाम है यह हर प्रकार के रोग को दूर करता है, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और हर प्रकार के कलमश को दूर करता है। ये बता रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है पद्यावली में, कि हे परम भगवान, जब कोई इच्छा करता है आपके नामों का उच्चारण करने के लिए तो पाप जो है स्वयं भयभीत हो जाता है, पाप भी डरने लगता है, और जो मोह है, मोह की जो महिमा है वो भी मूर्छित हो जाती है। और यमराज जी के जो सचिव हैं चित्रगुप्त, वो भी बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं और बार बार उस भक्त की ओर देखते हैं, उसके चरणों की ओर देखते रहते हैं चित्रगुप्त मर्यादा से। और ब्रह्मा जी जो है वो मधुपर की तैयारी करते हैं ऐसे भक्त की पूजा करने के लिए। पद्यावली में कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। द्वांत्रिम शत अक्षरम मंत्रम नाम षोडश शकान वितम पद्म पुराण में दिया है, प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। बहुत सुंदर श्लोक है। यानी कोई वैष्णव ये 16 शब्दों का नाम, 32 अक्षर जिसमें हैं, इन नामों का कोई उच्चारण करता है उसको निश्चित रूप से ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। ये नाम आपको ये सेवा प्रदान कर सकता है अगर हम चाहते हैं तो, लेकिन इसके लिए हमें मोल चुकाना पड़ेगा, है ना। क्रियताम यत कुधो भी लभ्यते, कहीं भी उपलब्ध हो इसको प्राप्त कर लो, खरीद लो। तत्रपि लौल्यम एक कलम मूल्यम, तो मूल्य कोई भी चुकाना हो चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि सौदेबाजी ना करें, है ना, हमें डिस्काउंट दे दो, ये दे दो, इस प्रकार नाम की महिमा के बारे में बड़ा अच्छा बताया हुआ है और कई प्रकार के यहाँ पे श्लोकों का उदाहरण दिया गया है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, यहीं पे विराम देते हैं। समय को ध्यान रखते हुए कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला अध्याय है वो है नाम अपराध। हरे कृष्ण। शुद्ध सत्व का मतलब होता है प्योर गुडनेस, ये केवल आध्यात्मिक जगत में होता है, क्योंकि वास्तव में ये कृष्ण का नाम है, ये आध्यात्मिक जगत का नाम है, इस जगत में ये नाम नहीं होता है। जो भक्ति है वो आध्यात्मिक जगत का विषय है, संसार का विषय नहीं है। तो विशुद्ध सत्व का मतलब है जो आध्यात्मिक धरातल पर स्थित है। शुद्ध सत्व में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं होता है, प्योर गुडनेस विशुद्ध सत्व, और शुद्ध नाम प्रकट होता है, शुद्ध सत्व प्रकट होता है हृदय में, तो फिर हम लोग निरंतर नाम ले सकते हैं। मायावादी अगर नाम लेते हैं वो नाम अपराध करते हैं, वो मायावादी जो नाम लेते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो नामों का उच्चारण करते हुए रूप को स्वीकार नहीं करते। हम नामों का उच्चारण किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ब्रह्म की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, एकत्व की भावना से वो नामों का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नाम उच्चारण जो है वो नाम अपराध बता रहे हैं। भक्तों ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में इसको नाम अपराध बता रहे हैं। तो भक्तों ठाकुर ने सुझाव दिया है कि मायावादी जब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो तो ऐसे संकीर्तन में नहीं जाना चाहिए। अवैष्णव मुखोदीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथा पया। हरि भक्ति लाल में श्रील सनातन गोस्वामी ने भी लिखा है, जो कि पद्म पुराण से है श्लोक, कि अवैष्णव के मुख से हरि कथा भी नहीं सुननी चाहिए। तो मायावादी सब अवैष्णव है और आजकल ये सब भी हरि कथा कर रहे हैं, भागवत कथा का सहारा ले रहे हैं, दूध में जहर मिलाकर दे रहे हैं ताकि आपको पता ना चले। देखने में लगता है दूध लेकिन उसमें जहर डाला हुआ है, आप कहते हैं वाह दूध पिला रहे हैं बादाम डाला है लेकिन साथ में जहर भी डाला है, और वो जहर क्या है, मायावाद का जहर,
वो प्रवेश कर जाता है अंदर, तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? मायावादी भाष्य सुनी ले होए सर्वनाश।
हम लोग हरि नाम लाभ पहुंचा रहे थे,
क्योंकि हम लोग का लाभ इसलिए कम से कम पहुंचा रहा है क्योंकि कम से कम हम लोग मायावादी नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कृष्ण के, परम भगवान कृष्ण के स्वरूप को स्वीकार करते हैं कम से कम, कि हाँ ये अर्चे विग्रह है या भिन्न है कृष्ण से, है ना। कम से कम थियोरिटिकली हम स्वीकार कर रहे हैं, इतना स्वीकार करना ही पर्याप्त है अपना। इसलिए हम जो नाम अपराध कर रहे हैं और वो जो नाम अपराध कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। हमारा इंटेंशन है कि हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, है कि नहीं? अगर है तो, लेकिन उनका इंटेंशन वो है ही नहीं, तो वो अपराधी जो है वो भयानक अपराधी है। उनका इंटेंशन है कि हम नाम लेते लेते हम एक हो जाएंगे, वो उनका इंटेंशन है, तो घोर अपराधी होते हैं वो। इसलिए ऐसे संकीर्तन का कोई लाभ नहीं मिलता उनको। जैसे बता रहे थे उस दिन प्रभु जी को बता रहे थे कि बनारस में जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे, प्रकाशानंद सरस्वती से मिले थे, वहां आज भी मायावादी लोग एकत्रित होकर नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत का जो पालन कर रहे हैं, दर्शन जिस दर्शन की वो चर्चा करते हैं, वो तो वही करते हैं जो शंकराचार्य ने स्थापित किया है। हरिनाम तो ले रहे हैं लेकिन फिर वो सुखी चर्चा करते हैं, वही ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्य। वो जानते क्यों हरि नाम लेते हैं? क्योंकि वेदांत दर्शन में ऐसी सुखी चर्चा में उनको कोई आनंद नहीं आ रहा, इस वजह से। इस सब रसविहीन है, अकाल है इनके हृदय में, सूखा है इनका हृदय, इसलिए भागवत का सहारा लेते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं तो इनको भी थोड़ा बहुत आनंद आता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब ये मायावाद दर्शन प्रस्तुत करते हैं तो खुद को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, सुनने वालों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेने से अच्छा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मायावादियों का लेना अच्छा नहीं है, वो ना ले तो अच्छा है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में लिखा है जब मायावादी लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वज्र से प्रहार कर रहे हो। तो जब भी वो नाम लेते हैं कृष्ण का तो कृष्ण को ऐसा लगता है कि वज्र से वो प्रहार कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्राकृत भक्तों को निश्चित रूप से लेना चाहिए। ये नाम अपराध की स्थिति में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेते रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, आज नहीं तो कल हम लोग, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है और वो दवाई ले रहा है, अभी बीमार है फिर भी दवाई ले रहा है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, वो स्वस्थ होना चाहता है। और दूसरा व्यक्ति है वो स्वस्थ होना ही नहीं चाहता, है ना, तो क्या करता है, दवाई लेता है, साथ में जो मना किया गया डॉक्टर के द्वारा वो भी करता है, तो ठीक होगा क्या वो? वैसे ही वो मायावादी की तरह है। एक भक्त है जो 16 माला का जप कर रहा है और दूसरा भक्त है जो 8 माला का जप कर रहा है, ये पूछ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा गाने का मतलब क्या है? संकीर्तन, अगर कोई पूरे दिन संकीर्तन कर सकता है तो अच्छी बात है, ठीक, कर नहीं पाते ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन संकीर्तन होना चाहिए ना, आप सब मिलते कहाँ हैं कलयुग में? कलयुग में सबको एकत्रित करना ही तो सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हमारा कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल होता ही नहीं।
भले भक्ति वृक्ष हो या कोई और वृक्ष हो, कि भक्त एकत्रित ही नहीं हो पाते हैं कलयुग का प्रभाव। कलयुग किसी को संगठित होने नहीं देता, कोई पहुंच ही नहीं पाता समय पर, तो संकीर्तन कैसे करेंगे हम? और अकेले कीर्तन हम कर नहीं सकते, इतना अभी आकर्षण है नहीं हरि नाम में कि अकेले बैठे हुए करताल बजा रहे हैं पूरे दिन, है कि नहीं? संकीर्तन तो तभी होगा ना जब सब भक्त होंगे, सब भक्त आते ही नहीं एक साथ, बड़ा मुश्किल है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम जप करना अच्छा है, जो कि हम दवाई के रूप में लेते हैं। संख्या पूर्वक नाम गाण नति भी, सिर्फ नाम ही नहीं प्रार्थनाएं भी संख्या पूर्वक करनी चाहिए, और साथ में प्रणाम भी संख्या पूर्वक करना चाहिए, ऐसे षट गोस्वामी करते थे। नाम गान नति भी, और इस प्रकार संख्या पूर्वक करने से क्या है, हमारा ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कहते हैं, इससे क्या होता है हमारा मन जो है अनुशासित होता है, इंद्रियां अनुशासित होती हैं, और धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है हमें। प्रारंभ में हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, और जब हम डिसिप्लिन करते हैं अपने आप को तो फिर वो स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाता है, हमारे लिए हरिनाम लेना स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ में हमें अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, मन को प्रशिक्षित करना होगा, नियम बनाकर संख्या देकर हम अनुशासित करते हैं मन को, प्रशिक्षित करते हैं अपने आप को संख्या देकर।
संख्या पूर्वक करते हैं टाइम पर मैकेनिकल हो जाता
है। मैकेनिकल इसलिए होता है, हरिनाम लेना मैकेनिकल कब होता है, जब हम लोग कोई तपस्या नहीं करते हैं, कष्ट नहीं उठाते हैं। शुद्धिकरण के लिए तपस्या करना आवश्यक है, हमने पहले ही बताया था, आराम का जीवन कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या सबसे बड़ी क्या है, प्रारंभिक भक्तों के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना तपस्या है। तो जो सेवाएं दी गई हैं गुरु के द्वारा उसको अच्छी तरह से करना होगा, बिना सेवा के कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होगा, कोई भी मंत्र वास्तविक फल नहीं दे सकेगा, भले वो गायत्री मंत्र हो या हरि नाम हो, वो फल नहीं प्रकट करेगा जब तक सेवा नहीं होगी। मंत्र जो है सेवा मांगता है, और सेवा दी जाती है गुरु के द्वारा, और जब वो सेवाएं की जाती हैं ठीक ठीक प्रयास किया जाता है, तो फिर जब हम जब करते हैं वो जब फिर मैकेनिकल नहीं होता, जब मैकेनिकल तब होता है जब हमारे पास कोई सेवा नहीं होती है, है कि नहीं? व्यवहारिक सेवा नहीं होती है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम जो जप कर रहे हैं वो एक खुराक के रूप में ले रहे हैं, मेडिसिन के, एनएचई औषधि माया नाशी बारो लागे, भक्तों ठाकुर कहते हैं ये औषधि के रूप में है, हरिनाम ले रहे हैं हम लोग, है ना? तो इसको औषधि के रूप में कितना लेना है ये गुरु में बताते हैं, तो बाकी समय क्या करनी है, सेवाएं करनी है। तो गुरु हर भक्त को अलग अलग सेवा देते हैं, अलग अलग परिस्थिति में भक्त रह रहे हैं, अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं, तो सबको अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं, तो उन सेवाओं को करना होगा, क्योंकि उन सेवा में तपस्या होती है, कष्ट होता है, ऐसा कष्ट उठाने से, ऐसा तपस्या करने से क्या होता है, फिर हमारे हृदय में प्रार्थना करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। जैसे उस दिन बड़ा अच्छा बता रहे थे सर्व साक्षी प्रभु कि पूरा भागवत जो है प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र भी अपने आप में एक प्रार्थना है। प्रार्थना हम कब करेंगे, जब हम लोग असहाय अवस्था में होंगे। जैसे बच्चा प्रार्थना करता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि जेन्युइन होना चाहिए वो रोना, बच्चे का रोना जेन्युइन होना चाहिए। बच्चा कई बार नाटक भी करता है, रोता है, जैसे उसको कुछ मिल जाता है रोना बंद कर देता हो, लेकिन वास्तव में जब बच्चा रोता है भूख के कारण, असली में रोता है, तो फिर माँ पास में आती है, बच्चे को उठाती है, उसको खिलाती है, नहीं? तो इसी तरह से हमें क्रंदन करना होगा कृष्ण के सामने हरिनाम लेते हुए, प्रार्थना करनी पड़ेगी हरिनाम लेते हुए। और ये प्रार्थना हम कब कर पाएंगे हरिनाम लेते हुए, जब हम लोग कष्ट में होंगे, और कष्ट में कब होंगे, जब हम सेवा करते हैं। जब हमें कोई सेवा ही नहीं ली, जब हम कोई तपस्या ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रार्थना कहां से आएगी? केवल श्लोकों का उच्चारण करने से थोड़ा चलेगा सिर्फ। जैसे रोज ब्रह्म संहिता से हम उच्चारण करते हैं, प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है, प्रभुपाद ने कहा कम से कम मैकेनिकल तो करें, ना करने से तो अच्छा है, इसलिए रोज हम लोग ब्रह्म संहिता से पाठ करते हैं। लेकिन उसमें हम लोग अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाएंगे जब हम असहाय अवस्था में होंगे, तो अपने आप को ऐसी परिस्थिति में हमें डालना पड़ेगा। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, जैसे प्रभुपाद ने अपने कई शिष्यों को इंग्लैंड भेजा और कई कंट्रीज में भेजा प्रचार के लिए, रशिया भेजा कई भक्तों को, जैसे बाद में भी कम्युनिज्म जब आया तो कई लोग रशिया गए, अभी भी उदाहरण दिया था हमने थोड़ी देर पहले। तो ये सब असहाय अवस्था में थे, कष्ट उठा रहे थे, इनको कष्ट मिल रहा था, इनको मारा गया पीटा गया है ना, और इन्होंने सेवाएं स्वीकार की, ये गए कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गए। और ऐसे में जो इन्होंने हरिनाम लिया, क्या आपको लगता है मैकेनिकल होगा उसमें? उस हरिनाम में इन्होंने करनन किया होगा, वो रो रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि आप हमें सेवा से मत हटाइएगा, ये लोग हमें इतना कष्ट दे रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये आंदोलन सफल हो, हम भले ना रहे लेकिन ये आंदोलन आगे बढ़ता रहे। तो ये प्रार्थना बेकार जाएगी, ये प्रार्थना निश्चित रूप से कृष्ण सुनेंगे। तो कभी कभी तो कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम जैसे प्रारंभिक भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। कई छोटा सेंटर खुल रहा है, मान लो आपको कहा जाता है जाओ गाजियाबाद मंदिर में, जाओ मंदिर चलाओ, मंदिर में दो भक्त रहते हैं, है कि नहीं, एक आप एक पुजारी, आप प्रवचन करते हैं वो श्रवण करते हैं, बस यही चल रहा है कि नहीं, तो बस सेवा रहना। तो ऐसे में रहते रहते फिर आप धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे रोज, और फिर जन्माष्टमी का समय आएगा, बड़े बड़े उत्सव आएंगे, आपके पास धन नहीं होगा, मंदिर में कई प्रकार की समस्याएं होंगी मंदिर चलाने के लिए, क्योंकि आप अकेले हैं, और उत्सव भी बनाना है, इतना बड़ा उत्सव बनाना है, प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाना है, आपको आज्ञा मिली है कि कंग्रीगेशन बढ़े वहां पर, यूथ प्रोग्राम बढ़े वहां पर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े, अब अकेले आपको सब कुछ करना है। तो फिर आप क्यों, निश्चित रूप से जगन्नाथ जी के सामने जब जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे, हरिनाम जब लेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे, अभी कुछ है ही नहीं प्रार्थना करने के लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आराम का जीवन। तो आराम का जीवन ब्रह्मचारी भक्तों के लिए, खासकर जिनको पूरा मौका मिला है सेवा करने का, उनके लिए बहुत खतरा है। गृहस्थ भक्त तो बेचारे, एक उनका लाभ ये है क्योंकि वो बाहर व्यवसाय कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वहां वैसे ही वो फंसे हैं, तो वैसे ही प्रार्थना ही कर रहे हैं वो दिन भर। अभी हमारे ये बेचारे निकल कर आए 20 दिन, बोलते हैं 20 दिन ऐसा लगा कि मैं कारागार में बंद था, अब सी ए फाइनल एग्जाम, अभी लास्ट रूप है, फर्स्ट रूप है अभी इन्होंने दिया है, तो ये प्रार्थना कर रहे थे 20 दिन से, कब निकलूंगा जंजाल से, ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं। तो इनका जब करना मैकेनिकल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हरिनाम जब भी ले रहे होंगे प्रार्थना कर रहे होंगे, कहां फंस गया मैं। तो ऐसी प्रार्थना को सुनते हैं कृष्ण, और आज नहीं तो कल आपको इस जाल से बाहर निकालेंगे, अगर आप निकलना चाहेंगे तो। हाँ, ये जरूर है, आपको लगना चाहिए कि आप कष्ट में, तभी तो प्रार्थना करेंगे। और जो पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं उनको फिर और कष्ट उठाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। हरिनाम में रुचि लाना इतना आसान नहीं है, हम सबके लिए बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बहुत लंबा रास्ता है नाम में रुचि लाना, है ना, बहुत घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार कष्ट उठाने पड़ते हैं, और इसलिए हमारे जो आचार्य लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, वो आंदोलन को फैलाते हैं, प्रचार के कार्य को बढ़ाते हैं और मंदिरों की स्थापना करते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो भक्त हैं, जो आराम का जीवन बिताना चाह रहे हैं, उनके लिए एक नया अवसर मिले कि हम फिर से चलो तपस्या करें, चलो एक नया आंदोलन शुरू करें, नहीं? तो इसलिए आनंदाम बुद्धिवर्धनम का अर्थ ये नहीं है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम का अर्थ है कि जब तपस्या करेंगे तब आनंदाम बुद्धिवर्धनम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को डालना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम नकल करें प्रभुपाद की तरह या पांडवों की तरह या हरिदास ठाकुर की तरह नकल करें कि 22 बाजारों में हमें भी कोड़ों से पीटा जाए नाम में आकर्षण जागृत करने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है।
इसका अर्थ यह है कि गुरु ने जो आज्ञा दी है वो हमारे लिए तपस्या है, असली तपस्या वो है एक प्रारंभिक भक्त के लिए। लेकिन बाद में जब ऐसा भक्त जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है, नाम में रुचि जागृत कर लेता है, फिर गुरु की जो आज्ञाएं हैं वो आज्ञा में भी रुचि आ जाती है, गुरु की आज्ञा में अमृत लगता है, है ना। लेकिन प्रारंभिक भक्तों को तपस्या लगती है। तो इस तपस्या की अवस्था में जब ऐसा प्रारंभिक भक्त प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, जैसे गौर गोविंद महाराज, शिल गौर गोविंद महाराज ने लिखा एक जगह पर कि भुवनेश्वर में मैंने क्राइंग स्कूल खोला है ताकि वहां, मैं चाहता हूं वहां सारे भक्त लोग रोए आकर हरि नाम लेते हुए, है कि नहीं। तो इन सब भक्तों ने तपस्या की अलग अलग स्थानों में जाकर। जब महाराज गए थे तो वहां जंगल था पूरा, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मंदिर बनाया वहां पर। प्रभुपाद जिस परिस्थिति में गए थे, विदेश गए थे, वहां कुछ भी नहीं था, और अपने शिष्यों को भी प्रभुपाद ने इस तरह से प्रशिक्षित किया, तो इसलिए सारे शिष्य आगे बढ़ गए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में गए जहां कोई नहीं था। जैसे हमारे थे एक ब्रह्मानंद स्वामी और गर्ग मुनि प्रभु, तो वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान बॉर्डर में उनको पकड़ लिया, और ये जर्नी वाले थे गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी समय आ गया, तुम दोनों का तैयारी करो, जो प्रार्थना करना चाहते कर लो। तो ये दोनों ने आंखें बंद की, उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि अब आखिरी समय आ गया है, थैली अब माला में हाथ डाल लो, हरि नाम लो, हम जा रहे हैं गोलोक। तो दोनों ने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद कर ली कुछ समय के बाद देखा रहे कुछ हुआ ही नहीं, वो आंखें खोली सामने वो खड़ा होता, मतलब ठीक है आगे से मत करना और दोबारा यह नजर मत आना, चलो वापस। पता नहीं उसका कैसे मतलब विचार बदल गया, उसका सोल्जर का जो भी था वो पाकिस्तानी सोल्जर का, उसका विचार बदल गया, छोड़ दिया। और वो क्योंकि लंबे समय तक नहीं आए थे, एक दो महीने तक, तो प्रभुपाद बहुत चिंता कर रहे थे उनके लिए। और जब वापस आए तो प्रभुपाद वास्तव में रो रहे थे, और ब्रह्मानंद स्वामी या किसी ने गर्ग मुनि शायद प्रभुपाद जी के पांव पकड़ लिए, और पांव पकड़कर वो भी रोए, प्रभुपाद भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, प्रभुपाद भी रो रहे हैं, और वो प्रभुपाद के पांव को छोड़ ही नहीं रहे। प्रभुपाद कह रहे हैं आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो पांव छुड़वाना चाह रहे लेकिन छोड़ ही रहे, क्योंकि उनको इतना अच्छा लग रहा था प्रभुपाद के चरणों को पकड़कर, बहुत अपनापन लग रहा था। तो प्रभुपाद इन सबको इतना प्रेम दे रहे थे और इन सब का इतना ख्याल रखते थे, इसलिए प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, और इसलिए क्योंकि वो तैयार हो जाते थे तो इसलिए इनको सफलता प्राप्त हुई, है कि नहीं। तो इसलिए इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है, जितनी आसानी से हम सोचते हैं कि जीवन के अंत काल में कृष्ण याद आ जाएंगे, प्रेम जागृत हो जाएगा, हम धाम चले जाएंगे, इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। मोल चुकाना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो इस परीक्षा में सफल हो गया चला जाएगा, परीक्षा तो ली जाएगी सबकी, है कि नहीं। परीक्षा देने के लिए तैयार है, परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार है, यह हमें फैसला करना है। क्या हमारे ऊपर आखिरी प्रश्न है, महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो कलि संत्रोपनिषद में दिया है उसमें लिखा है ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, इस तरह से दिया है। और जहां तक कई जैसे और संस्थाएं हैं जिन्होंने इस नाम को पलट दिया है, वो इसलिए पलट दिया है क्योंकि राम के भक्त बहुत हैं, और उन्हीं के प्रकाशन में अगर आप 50 साल पहले देखेंगे उनके प्रकाशन में, तो उसमें हरे कृष्ण पहले आया हुआ है। अभी के प्रकाशन में देखेंगे तो हरे राम पहले है, 65 से पहले। तो शास्त्रों के अनुसार यही है, पहले हरे कृष्ण है फिर हरे राम। और कई लोग कहते हैं महापुरु ने बदल दिया, ये गलत है, इसका कोई शास्त्रों में कहीं भी सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है कि महापुरु ने आके पलट दिया करके। महापुरु क्यों पलटेंगे जब है ही नहीं ऐसा।
तो भी एक में जो
कहाँ दिए, कौन से शास्त्र में दिया है पता नहीं, उस वक्ता से पूछना पड़ेगा। शास्त्र प्रमाण नहीं है इसका कुछ, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हमारे आचार्यों के द्वारा जितनी भी टीकाएं दी गई हैं, श्रील जी गोस्वामी, गोपाल गुरु गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, सब ने हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही टीका दी है और बताया कि कैसे गोलोक धाम में वहां भी हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। उन्होंने तो इस प्रकार चर्चा ही नहीं की, तो ये व्याख्या ठीक नहीं है। कलिशंत्र उपनिषद, ये तो एक ही बताया हमने, पद्म पुराण में भी है और कई शास्त्रों में है, बृहन्नाद्य पुराण। तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, ये है योग्यता। तृण से भी ज्यादा अपने आप को नीच मानते हुए, वृक्ष से भी ज्यादा अपने आप को सहनशील मानते हुए, सहनशील बनाते हुए, दूसरों को मान देते हुए, मान की इच्छा ना रखते हुए, ऐसा भक्ति जो है सदा हरि नाम ले सकता है और वही शुद्ध नाम ले पाए, है कि नहीं। शुद्ध नाम है, किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं होती, केवल एक ही इच्छा होती है कि कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, यह शुद्ध नाम। शुद्ध नाम लेते हो अगर हम कोई और भी इच्छा कर रहे हैं, एक होता है भुक्ति नाम, भुक्ति नाम का मतलब है नाम ले रहे हैं लेकिन भोगने की इच्छा कर रहे हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा करें नाम लेते हुए, हरे कृष्ण साथ में सोच भी रहे, भुक्ति नाम, उसको भुक्ति नाम कहते हैं। और मुक्ति नाम एक है, नाम लेते हुए मुक्ति की इच्छा कर रहे हैं, तो ये दोनों शुद्ध नाम नहीं है। लेकिन शुद्ध नाम क्या है, केवल सेवा के लिए इच्छा कर रहे हैं, भगवत सेवा के लिए इच्छा कर रहे हैं, वो है शुद्ध नाम। प्रेम के लिए इच्छा कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद
प्रभु की,
सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।